आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, मेरा नाम है नियति और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की इंग्लिश किताब की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम जिसका नाम है ऑन किलिंग अ ट्री। तो रोज की तरह मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा फॉर्मेट क्या होगा ये पोयम पढ़ने का। सबसे पहले मैं आपको ये पोयम रीड करके दिखाऊंगी, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स को हम एनालिसिस करेंगे, मतलब उनका अच्छे से उनका मतलब जानेंगे, उनको सेंटेंसेस में कैसे उनका प्रयोग करना है हम सीखेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको समरी बताऊंगी पूरे पोयम की, और उसके बाद स्टेंजा बाय स्टेंजा यानी कि हर पैराग्राफ के मतलब हर पैराग्राफ के साथ मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगी ये पोयम, ओके। तो शुरू करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री। You must have observed people cutting down trees, but can they kill a tree? Is it easy to do so? Let's read the poem and find out what the poet says on killing a tree. तो शुरू करते हैं पोएम रीड करना। It takes much time to kill a tree, not a simple jab of the knife. Not a simple jab of knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs. Miniature bogs, which if unchecked will expand again to former size. No, the root is to be pulled out of the anarching earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out, or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. Then the matter of scorching and choking, in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. तो ये जो पोएम है ना बच्चों, वो लिखी है हमारे पोएट जीवी पटेल ने, ओके? नीचे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करने में, मैं उनका आपको मतलब समझाऊंगी। पहला जो वर्ड है वो है जैब, यानी कि सडन रफ ब्लो, यानी कि एकदम से अचानक से किसी का ब्लो करना यानी कि मार देना, जिसका मतलब है जैब। Leprous hide मतलब discolored bark। अब आप ये सोचोगे कि discolored का मतलब कलर, जिसको कलर ना हो वो, और bark का मतलब है किसी भी पौधे की छाल, तो उसका वर्ड है bark, ओके? आगे अगर जब हम चलते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है hack, यानी कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, यानी कि आप सोचो कुरहाड़ी लेके किसी भी चीज को आप जब रफली चॉप करते हो ना, उसको कट करने के लिए, तोड़ने के लिए, तो उसको हैक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एंकरिंग अर्थ, मतलब कि ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो अच्छे से बहुत ही फर्म तरीके से पृथ्वी ने जो है मिट्टी ने पकड़े होते हैं, उसको कहते हैं एंकरिंग ऑफ द अर्थ। यानी कि आप कह सकते हो एंकरिंग, यानी कि आपने एंकर देखा होगा जो मोस्ट ऑफ द टाइम जहाजों के पास होता है, जब भी कोई जहाज वो समंदर में जब ऐसे ट्रैवल नहीं कर रहा होता, रुक रहा होता है, तब एक बहुत ही फर्म आयन का मतलब पीस होता है बच्चों, जो कि अंदर समंदर में फेंका जाता है, और वो क्या करता है, जो समंदर की जो रेती है उसमें फंस जाता है और जहाज को वहीं पे वही उसी एरिया में सीमित रखता है और बह जाने नहीं देता, उसको कहते हैं एंकर, ANCHOR, एंकर, ओके। अगला वर्ड है स्नैप्ड आउट, यानी कि चॉप्ड आउट, यानी कि निकाल फेंकना, यानी कि कट करना। स्क्रॉचिंग एंड चोकिंग का मतलब है द ड्राइंग अप ऑफ अ ट्री आफ्टर बीइंग अप्रूटेड, यानी कि जो पेड़ है उसका ड्राई हो जाना, उसका सूख जाना कट करने के बाद, मतलब पूरी तरह से वो मर जाना पेड़, ओके। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको ब्रीफली इस जो बहुत ही खूबसूरत हमारी पोयम जो अभी हमने पढ़ी है उसकी मैं आपको समरी बताती हूँ, ओके। हम हिंदी में ही पहले समरी मतलब समझे समरी समझेंगे, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश में भी समझाऊंगी, ओके। सो इस पर्टिकुलर पोयम में बच्चों कवि हमसे कहता है कि यदि हमने एक वृक्ष मारना हम चाहते हैं तो इसमें बहुत अधिक समय लग जाता है, बहुत ज्यादा वक्त लगता है। साधारण चाकू के द्वारा किए गए केवल कटाव से वृक्ष नहीं मर सकता, यानी कि आप नॉर्मल से आप छुरी अगर लेके वृक्ष पे अगर मार लो तो वो वृक्ष जो है पौधा वो नहीं मरता। वृक्ष धरती से भोजन और अन्य पोषक तत्व प्राप्त करके बड़ा हो जाता है, यानी कि जो प्लांट है यानी कि जो पौधा है वो बड़ा होने के लिए वो क्या क्या चीजें यूज करता है, आपने आपकी साइंस कक्षा में भी पढ़ा होगा, आपकी विज्ञान कक्षा में। पौधा क्या करता है, सूरज की किरणों से मतलब धूप ले लेता है, पानी ले लेता है, और मिट्टी में से जो प्रॉपर जो मिनरल्स होते हैं, धातु होते हैं, वो लेके प्लांट जो है पौधा वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाता है ना। तो वो सूर्य के प्रकाश से हवा और जल के वर्षों तक मतलब कंज्यूम करता है वो, और बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। आप अगर सोचो कि एक बहुत छोटा छोटी सी जो बीज होता है, अगर आप उसको मिट्टी में डालोगे, अच्छे से उसको पानी वगैरह दे दोगे आप इन महीनों में, तो आगे चल के वो बहुत ज्यादा, ये मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि बहुत ज्यादा वो शक्तिशाली पेड़ बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा बीज बोते हैं। ओके, तो यदि हम काटने से पहले या फोड़ने मतलब यदि हम काटने या फाड़ने का प्रयास करते हैं तो इसलिए आपको अधिक पीड़ा नहीं होती। अगर प्लांट जो है, पौधा जो है छोटा है तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, पर तभी अगर वो प्लांट बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा फर्म बना हुआ है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। ओके, ना इसकी रक्त बहती हुई त्वचा जल्दी ठीक हो जाती है, यानी कि जब प्लांट छोटा मतलब बड़ा होता है, अगर आप छुरी से उस पे कोई घाव कर दो तो मतलब थोड़ा सा उसमें से कुछ ऐसे स्टिकी मटेरियल निकलेगा, उसके बाद कुछ कुछ दिनों बाद जो पेड़ है वो ठीक हो जाता है, मतलब वो हील कर देता है अपने आप को। उसकी छोटी छोटी टहनियां फूट पड़ती है और बहुत ही जल्द वो बहुत बड़ा शक्तिशाली प्लांट हो जाता है, शक्तिशाली जो है पौधा हो जाता है। यहाँ पे कवि हमें कहता है कि पेड़ की जो असली ताकत होती है वो उसके जड़ों में होती है, यानी कि पेड़ के रूट्स में होती है उसकी असली ताकत। यदि हम वृक्ष को हमेशा के लिए मारना चाहते हैं तो उसकी जड़ों को पूर्ण रूप से हमें बाहर निकालना चाहिए। ये ना हो कि हम छोटा सा कट करके मतलब ऐसे कुछ छोटा कट करके फिर हम उसे छोड़ दे तो फिर वृक्ष मर जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। जब हम पूरा पौधा अगर हमें मारना चाहते हैं हम, तो उसकी रूट्स जो हैं, उसके जो जड़े हैं वो हमें निकाल फेंकनी होती है, उन्हें खुले में छोड़ देना चाहिए ताकि वो धूप से मुरझा जाए और हवा के कारण और हवा ना होने के कारण उसका दम घुट जाए। अगर हमें सच में पेड़ को हम मारना चाहते हैं तो हमें उसको मिट्टी से निकालकर हमें उसको प्रॉपर धूप में मतलब ऐसे धूप में छोड़ देना चाहिए ताकि वो सूख जाए और उसको पानी ना मिले। मतलब अगर वो मिट्टी में मिट्टी के साथ मतलब उसका कोई कनेक्शन मतलब अगर वो जुड़ा है तो मिट्टी से वो पानी निकाल सकता है, तो ये भी वो पौधा ना कर पाए। इसलिए हमें क्या करना है, उसको पूरी तरह से निकालना है। इस प्रकार से आकार और रंग बदलने की लंबी प्रक्रिया के पश्चात हम कह सकते हैं कि वृक्ष जो है वो मर गया है। ओके, तो बच्चों ये तो मैंने आपको बहुत ही शब्दशः यानी कि वर्ड टू वर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट ये हमें यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि कविता का केंद्रीय विचार यानी कि कविता की सेंट्रल आइडिया जो है वो क्या है और कविता का सार क्या है। तो हम देखेंगे अभी केंद्रीय जो विचार है कविता का क्या है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर कविता में कवि ने हमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही फनी तरीके से पेड़ों को कैसे खत्म किया जाता है इस बारे में बताया है। वास्तव में इसका अर्थ जो है वो विपरीत है। ओके, तो कवि कटाक्ष करता है कि इस प्रकार से पेड़ों को खत्म किए जाए किंतु उनका आशय उन्हें बचाने का मतलब बचाने का होता है। वो आगे ये कहते हैं कि पेड़ को चाकू से हत्या करने का मतलब हत्या करने की अगर हम कोशिश करते हैं वो बहुत ज्यादा कठिन है। पेड़ को पृथ्वी से विकसित करने के लिए सालों लग जाते हैं और इसी वजह से पेड़ की जो जड़ें हैं बच्चों वो बहुत ज्यादा अच्छे से पृथ्वी में बस जाती हैं, वो जकड़ के रखती हैं। वो कहते हैं कि पेड़ को अगर हमें समाप्त करना है, उसकी अगर उसको कंप्लीटली मार देना चाहिए, हमें मारना अगर हम चाहते हैं तो उसकी जड़ से पूरी तरह से मिट्टी से हमें उसको बाहर निकालना है। वो ये भी कहते हैं कि पेड़ हमारी जो है जीवन रेखा है। क्यों ऐसा कहा है उन्होंने, बहुत ही सिंपल रीजन है इसका। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु मिलता है जो हम जिससे हम सांस लेते हैं। आपने आपकी साइंस कक्षा में भी पढ़ा होगा कि पेड़ों की वजह से बारिश आती है, पेड़ों की वजह से जो है बच्चों वो हमें मतलब पूरी तरह से टेम्परेचर जो है हमारे एनवायरनमेंट का वो बनाए रखती है पेड़े पेड़। और तो और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज्यादा जो बढ़ जाता है उसका भी कंट्रोल पेड़ रखते हैं, है ना, मतलब कंट्रोल में रखते हैं। तो इसी वजह से पेड़ को हमारी जीवन रेखा कहा गया है, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। ये कवि का मेन संदेश, मतलब प्रॉपर जो संदेश है कविता की मैसेज वो ये है कि पेड़ों की हमें हत्या नहीं करनी चाहिए। आगे जाके कवि कवि हमें ये कहते हैं कि पेड़ों के कुछ जो गुण है वो एकदम मनुष्य की तरह है, यानी कि वो कहते हैं कि सत्य की जड़ें बेहद गहरी होती हैं और तथा इनको आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। यानी कि कवि हमें यहाँ पे ये कहते हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई डिफिकल्टीज आ रही हो तो हमें हमेशा सत्य का सहारा लेना चाहिए। सत्य यानी कि ट्रुथ, ओके, मतलब अगर हम सत्य पूरी हमारी बाजू जो है वो अगर अच्छाई के साइड से है, अच्छी अगर है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा सामने वाले हमारे एनिमी को कि हमें हमारी जड़ों तक जाकर हमें दुख पहुंचाने का। जिस तरह से पेड़ जो होते हैं वो अपना अपनी जिंदगी बनाए रखते हैं, भले आप उनपे कुल्हाड़ी से वार करो या फिर चाकू से वार करो, आप उसको पूरी की पूरा आप उस पेड़ को कट कर लो, फिर भी क्या होगा बच्चों, कुछ दिनों बाद जब बारिश आएगी तब वो पेड़ जो है अपनी डालियां जो है वो फिर से खिलाएगा और फिर से वो पेड़ नई तरह से जन्म लेगा। ऐसा नहीं कि आप उसको छोटा सा घाव करके आप उसको छोड़ दो तो पेड़ मतलब पेड़ को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और पेड़ मर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती, ओके। तो जिस तरह से सत्य की जो जड़ें हैं वो बहुत ज्यादा गहरी होती हैं, उसी तरह से इस पेड़ों के भी जो मतलब रूट्स होते हैं वो बहुत गहरे होते हैं और इनको आसानी से उखाड़ा नहीं जा सकता। वो इसकी तुलना बुराई से करते हैं कि जो जिसका भी जड़े जिसकी काफी गहरी हैं, बुराई की भी जड़े तो काफी गहरी होती है, तथा इनको बिना परवरिश के बदले इन्हें हमें खत्म नहीं किया जा सकता। और अब देखते हैं कविता का सार क्या है। कवि वृक्ष को एक जीवित जीव के रूप में देखता है, मतलब कवि कहते हैं कि पेड़ जो है वो एक जीवित क्रीचर है, लिविंग क्रीचर जिसको हम कहते हैं वो है, और जो कि सही भी है, पेड़ पेड़ों में जान भी तो होती है ना, हमने हमारी साइंस क्लास में तो पढ़ा होगा। तो कवि के अनुसार इसे भी अन्य प्राणियों की तरह जीने देने का अधिकार है। अब आप अपनी आस पड़ोस में आप देखोगे जब भी कोई रोड कंस्ट्रक्शन होता है या कुछ होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेड़ जो है वो बिना मतलब के कई कबार तो पेड़ कट किए जाते हैं, है ना। अभी मैं आपको हमारे यहाँ का एग्जाम्पल दे देती हूँ बच्चों। तो हमारे यहाँ अभी के लिए एक अच्छा सा रोड कंस्ट्रक्ट होने जा रहा है, बट रोड के जो अगल बगल में बहुत सारे पौधे थे। एक तो पौधा ऐसा था जो मैं अपने बचपन से देखती आई हूँ, मेरे पापा ने भी वो बहुत उनके बचपन से देखते आए हैं वो, यानी कि कहने का मतलब कि वो बहुत पुराना पेड़ है। पर जब ये जो जब घड़ी आई मतलब जब रोड बढ़ाने का काम आया तो वो पेड़ एकदम से कट कर दिया गया। हमने मतलब हम इंसान जो है वो बिल्कुल ये सोचने के लिए अपने आप को मजबूर नहीं करते कि लिविंग क्रीचर को इससे ऐसे इस तरह से हम कैसे हर्ट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उस पेड़ पे बच्चों बहुत ज्यादा जीव रह रहे थे, मतलब कि बहुत सारा, क्योंकि वो पेड़ बहुत ज्यादा पुराना था तो उसपे बहुत ज्यादा घोंसले भी होते मतलब थे। इसी के साथ हम इंसानों ने एक पेड़ कट करके बच्चों जो है वो बहुत सारे मतलब बहुत सारे अदर लिविंग क्रीचर्स है, जैसे कि बहुत सारे पंछी जो हैं उनको भी हमने बेघर कर दिया अपनी लापरवाही की वजह से, है ना। तो कवि कहते हैं कि जैसे हम लोगों को जीने का अधिकार है, वैसे भी जो पेड़ पौधे हैं उनको भी जीने का अधिकार है, लेकिन आदमी जो है इंसान इनको क्रूरता से और लापरवाही से उनको कट करे जा रहा है, मारे जा रहा है, और ये बहुत ज्यादा क्रूरता भरा हमारा जो है कार्य है। तो ये कविता परोज से ये संदेश देती है कि पेड़ हमारी जीवन रेखा है और उनकी हत्या हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन वास्तव में इसका बहुत ही विपरीत अर्थ है। यहाँ अर्थ है कि एक व्यक्ति किसी का भी कातिल हो सकता है। अगर वो पेड़ इस तरह से मारता है, वह पोएट हमारे कहते हैं कि चाकू से पेड़ का कोई नुकसान नहीं होता। अंत में कवि हमें ये भी कहते हैं कि पेड़ की अगर हत्या करनी है तो उसे पूरी तरह से हमें उखाड़ देना चाहिए, ना कि थोड़ा सा कट करके छोड़ना चाहिए। और तो और कवि हमें कहते हैं कि पेड़ जो है बहुत ही ज्यादा कीमती है और इनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम एक पेड़ कट करते हैं ना बच्चों, तब हम बहुत ज्यादा हमारे जो एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन लेवल जो है यानी कि प्राण वायु जो है वो हम कम करते हैं, है ना। हम हमारे यहाँ पे बारिश लाने की संभावना भी कम कर देते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि हम पेड़ कट करते हैं। तो यहाँ भी कवि कह रहे हैं कि पेड़ों की जड़ें जो है वो बहुत गहरी होती हैं और इतनी आसानी से उनको कोई उखाड़ नहीं सकता। वो इसकी तुलना जो है बुराई से करते हैं और अच्छा और ये कहते हैं कि बुराई और अच्छाई इसी तरह से गहरी होती है जो आसानी से खत्म नहीं की जा सकती। तो अगर हमें कोई चीज जड़ से अगर हमें मतलब किसी भी चीज को हमें मारना है तो हमें उस पे उसके जड़ों पे पहले वार करना चाहिए और बाकी फिर बाकी सारी चीजों पे। जैसे कि अगर हमें पेड़ को अगर हम कट करना अगर हम पेड़ को मारना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे उसका उसकी जो जड़ है जड़ें हैं पेड़ की उस पे हम पहले अटैक करेंगे और उसी तरह से उसको जो है मिट्टी से बाहर निकालेंगे ताकि धूप जो है उसे मतलब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से धूप उसको बहुत ज्यादा सुखाए और उसको पानी ना मिले और इस तरह से पेड़ जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट हो जाए। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पोयम की स्टेंजा बाय स्टेंजा इस पोयम का हम मतलब समझेंगे। सो बेसिकली द पोयम सेंसिटाइजेस द रीडर एंड हाईलाइट्स द फैक्ट द ट्रीज आर लिविंग थिंग्स, यानी कि जो हमारे पोएट है वो एम्फसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं हमें ये समझाने के लिए कि पेड़ जो है वो लिविंग यानी कि जिंदा क्रीचर हैं। और वो भी कह रहे हैं कि ह्यूमंस जो हैं वो पेड़ों को कट करने के लिए उनको डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं उसी तरीके से जैसे हम ह्यूमंस जो है वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में लगे हैं उसी तरीके से हम हमारा सराउंडिंग जो है वो भी डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। अ ट्री डज नॉट डाई मियरली बाय कटिंग बिकॉज इट री ग्रोज फ्रॉम वेयर इट हैज बिन कट, इफ इट हैज टू बी डिस्ट्रॉयड इट शुड बी अपरूटेड। मतलब यहाँ पे कवि हमें कह रहे हैं कि पेड़ जो है वो हम इंसानों की तरह नहीं होता, मतलब भले ही उसमें हम इंसानों के जैसे बहुत सारी मतलब फीचर्स हो यानी कि वो लिविंग है जिंदा रहने के लिए वो बहुत सारी चीजें यूज करता है पर वो इंसानों की तरह एकदम से बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी हम इंसानों के ऊपर कोई संकट आ जाता है हम अपने आप को बहुत ज्यादा ऐसे डिस्ट्रॉय मतलब महसूस कर लेते हैं है ना। पर पेड़ ऐसे नहीं होते, पेड़ क्या करते हैं जहां से उनको मतलब जहां से उनको हमने कट किया है वहीं से वो फिर से दोबारा से रीग्रो होना शुरू करते हैं, अच्छी नई तरीके से अपनी जिंदगी शुरू जीना शुरू करते हैं, अच्छी तरह से वो ग्रो हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं अब वर्ड टू वर्ड मतलब समझने का। सो इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ अ नाइफ, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ अ नाइफ विल डू इट, इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एयर वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स। यहाँ पे और डिफिकल्ट वर्ड मैंने आपको बताया था लेप्रस हाइड और जैब जिसका मतलब है सडन रफ ब्लो। तो अ सिंपल कट डज नॉट डिस्ट्रॉय अ ट्री ग्रोज ग्रेजुअली इट इज रूटेड इन द सॉइल, यानी कि ट्री जो है वो अच्छी तरह से मिट्टी में जो है वो अच्छी तरह से खुद को उसने रूट किया होता है, जकड़ रखा होता है। अ प्लांट टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल टू ग्रो इन टू अ बिग ट्री, छोटा पौधा जो होता है वो मिट्टी से न्यूट्रिशन लेता है, मतलब जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स होता है वो लेता है मिनरल्स वगैरह और क्या करता है यूज करके एक बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। अ ट्री इज फर्मली बाउंड विद द सॉइल, इट टेक्स इन सनलाइट वाटर एंड एयर टू ग्रो इन टू अ स्ट्रॉन्ग ट्रंक एंड हैव न्यूमरस लीव्स, यानी कि पेड़ जो है वो अच्छी तरीके से मिनरल्स ये अपने आप में एब्जॉर्ब करता है और बहुत बड़ा पौधा बन जाता है एंड उसका जो है बार्क भी उसकी स्ट्रांग बन जाती है, जो उसके ब्रांचेस होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वोंट डू, नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्वीग्स, मैनिक्योर बॉज विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपांड अगेन टू फॉर्मर साइज। यहाँ पे हैक का मतलब मैंने आपको बताया था बच्चों, कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज है ना। तो मतलब जानते हैं, सो बेसिकली ह्यूमंस कट एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्रीज इनटू मेनी पीसेस दैट इट इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द ट्री, द पॉइंट ऑफ द ट्री विच गेट्स कट गिव्स आउट अ सैप जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्लीड्स, ग्रेजुअली दिस वुंड विल हील फ्रॉम दैट एंड न्यू ब्रांच विल स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। यानी कि जब भी हम ह्यूमंस जो हैं वो थोड़ा सा जब हानि पहुंचाते हैं ट्री को, सपोज नाइफ लेके या फिर छुरा लेके, तब क्या हो जाता है ट्री में ट्री के बार्क में से थोड़ा कुछ सब्सटेंस निकल रहा होता है जबकि जो अनकलर्ड होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पर वो ये दिखाता है कि वो ट्री जो है वो पौधा हर्ट हुआ है, यानी कि उसको थोड़ी बहुत जख्म हुई है, उसको उसका वुंड जो है वो हर्ट हुआ है, मतलब ट्री बहुत ज्यादा हर्ट हुई है। पर क्या ट्री जीना छोड़ देती है इसकी वजह से, क्या वो मर जाती है ट्री? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बच्चों। हालांकि अगर हम एक ब्रांच कर ट्री की कट करें तो क्या होता है, जब नेक्स्ट बारिश आती है तब उस वही कट की गई जो एरिया है उसी से नए ट्री, नए लीव्स जो है, नए पौधे, नए एक पत्तों का जन्म होता है और प्लांट जो होता है वो फिर से बहरने लगता है, फिर से फूलने लगता है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज टू बी रोप्ड टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट फ्रॉम द अर्थ केव, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। यानी कि इसका मतलब ये है बच्चों, इन ऑर्डर टू किल अ ट्री इट हैज टू बी अपरूटेड, यानी कि उसकी जो जड़ें हैं उससे उसको निकालना हमें होता है अगर मारना चाहिए तो। वन हैज टू सेपरेट द ट्री फ्रॉम द अर्थ विच सपोर्ट्स इट, यानी कि जो मिट्टी और जो पेड़ है उसका जो कनेक्शन है वो जहाँ पे जुड़ जाते हैं वो ही हमें डिस्ट्रॉय करना है अगर हमें ट्री को जो है कंप्लीटली मारना है तो। सो द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड द ट्री विद द सॉइल इन द पिट ऑफ द अर्थ, यानी कि जो रूट्स जो होते हैं जड़ें पौधे की वो एक मेजर हिस्सा होती है एक एक पर्टिकुलर प्लांट को, पौधे को जिंदा रखने के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट का जो फूड है, उस पौधे का जो खाना है, वो बस उन्हीं रूट्स की वजह से उसको मिलता है। और वो कहाँ से मिलता है बच्चों? वो मिलता है सॉइल से, यानी कि मिट्टी से। तो अगर हम उसका खाना ही बंद कर दे, यानी कि उसके जो रूट्स है वो ही अगर हम निकाल दें मिट्टी से, तो वो खाना कहाँ से बनाएगा अपना? ये तो पॉसिबल नहीं है। और हमारे पोएट हमें कहते हैं कि जो सनलाइट वो पहले जब मतलब जब मिट्टी से जुड़ा होता होता होने वाला जो वक्त है पेड़ का, जब वो मतलब जो सन है, सन रेज जो है वो अपना खाना बनाने के लिए तैयार मतलब यूज करता था पौधा, तो वही सन रेज हम पौधे के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं पौधे को, उस पेड़ को मारने के लिए। कैसे? कि हम उसके जो रूट्स है वो सनलाइट को एक्सपोज कर देने से। इससे क्या होगा, रूट्स जो है वो सूख जाएंगे और पेड़ को खाना भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, और इसी तरह से वो पेड़ जो है वो सूखते सूखते मर जाएगा। सो फ्रॉम देयर द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन पार्ट ऑफ द ट्री द रूट्स हैव टू बी डिटेच्ड, द रूट्स आर व्हाइट इन कलर एंड आर डैम्प, यानी कि जो अगर हम कोई भी पौधा अगर हम देखें छोटा, अगर आप देखो तो पौधे का सबसे जो वेट यानी कि सबसे जो गीला हिस्सा होता है वो होता है उसके रूट्स। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट पानी जो है जिंदा रहने के लिए यूज करता है, कहाँ से? मिट्टी से यूज करता है। और जब आप उसको देखोगे, किसी भी पौधे की जड़ें अगर आप देखोगे तो वो बहुत ज्यादा नम होती है, यानी कि बहुत ज्यादा वेट होती है। ओके चलते हैं अगले पैरा पे। देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विथरिंग एंड देन इट इज डन। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव पार्ट लगा मुझे बच्चों। क्यों? क्योंकि एक ट्री को, एक पौधे को मारने का इतना उन्होंने मतलब एक तरीका बताया है जो कि जब पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत ज्यादा फील हो जाती है, क्योंकि देन इट इज डन, ये जो लास्ट वाली लाइन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है कि चलो ये एक आखिरी था फिर वो पेड़ नहीं बचा, यही दर्शाता है ये लाइन्स। ओके फिर से पढ़ते हैं ये पैरा। देन द मैटर ऑफ स्क्रॉचिंग एंड चोकिंग इन द सन एंड एयर, ब्राउनिंग हार्डनिंग ट्विस्टिंग विथरिंग एंड देन इट इज डन। यानी कि पोएट हमें कहते हैं कि वंस द ट्री हैज बीन अपरूटेड देन ग्रेजुअली इट विथर्स एंड ड्राइव्स अप विद द एक्शन ऑफ हीट एंड विंड, द ट्रंक विल बिकम ब्राउन ट्विस्ट एंड इट विल हार्डन, फाइनली द ट्री विल डाई दिस वे। यानी कि जो पौधा जो है वो मर जाएगा, कैसे? वो पहले तो ब्राउन हो जाएगा, उसकी जो बार्क है यानी कि खाल जो है उसकी ब्राउन हो जाएगी, फिर हार्ड हो जाएगी मतलब सूख जाएगी, ड्राई हो जाएगी, उसके बाद वो ट्विस्ट हो जाएगी मतलब एक अपने आप से जो डिहाइड्रेट हो जाएगी, वो उसके अंदर से पानी सब चला जाएगा। किस वजह से? बहुत ही तेज धूप की वजह से। और फिर बाद में जो पेड़ की जो जीवन यात्रा है वो वही वही उसी उसी वक्त वहां पे समाप्त हो जाएगी। पर बच्चों हमें ये यहाँ पे ध्यान देना है कि ट्री जो है वो एकदम से ऐसे मरेगी नहीं, मतलब उसको बहुत ज्यादा सफरिंग होगी उस ट्री को, उस पौधे को, उसी के साथ वो ट्री मर जाएगी। सो बेसिकली ऑन किलिंग अ ट्री, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव पोयम है, हमारे पोएट ने हमें बताई है, बट वो बहुत ही उन्होंने ह्यूमरस तरीके से पेश की गई है, यानी कि बहुत ही फनी तरीके से उन्होंने ये कविता जो है वो मतलब लिखी है। सो द पोएट बेसिकली पर्सुएट्स द रीडर नॉट टू डिस्ट्रॉय द ट्री एंड इक्वेट्स इट विद द किलिंग ऑफ द ह्यूमन बींग। हमारे जो पोएट है वो कह रहे हैं, हमें उन्हें हम हमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रीज जो हैं वो जिंदा होती हैं, बस इंसानों की तरह ही उनमें भी जान होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि द रीजन जो मैंने अभी पिछले स्टैंजा में आपको कहा मुझे बहुत ज्यादा सेंसिटिव लगी, शायद ये उनका एक तरीका हो सकता है कि हमें बहुत ज्यादा मतलब ट्री की जो सफरिंग है पौधे की वो हमें बताकर हमें वो ये जताने की कोशिश करें कि मतलब जैसे इंसानों को तकलीफ होती है वैसे भी पौधों को भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वो तो जिंदा होते हैं, है ना। सो मियरली कटिंग द ट्रंक ऑफ द ट्री डज नॉट किल इट, बस उसको नुकसान पहुंच जाता है, थोड़ा थोड़ा बहुत वो प्लांट जो है वो हर्ट हो जाता है बट मर नहीं जाता। सो व्हेन अ ट्री इज कट द सैप फ्लोज आउट जस्ट लाइक अ वाउंडेड मैन ब्लीड्स, यानी कि उसमें से जो मैंने कहा था कि कलरलेस जो लिक्विड आता है एक पौधे से, आप जब उसको उसका थोड़ा पार्ट जब कट करते हो तब, तो वो वैसे ही होता है जैसे इंसानों के शरीर से जैसे खून निकलता है ना कट वगैरह अगर पड़ा तो उसी तरह से जो प्लांट है जो पौधा है वो भी ब्लीड करता है। सो वंस द वुंड इज हील्ड न्यू ब्रांचेस एंड टाइनी ट्रीज और टाइनी लीव्स ग्रोस फ्रॉम देयर, है ना, विच एंड दे ग्रो इन टू ट्रीज, यानी कि जब हम कट करते हैं पौधे को तब उसमें से जो छोटे छोटे मतलब लीव्स निकलते हैं और वो एक नई जान देते हैं उस पौधे को अच्छी तरह से, वो भी और ग्रो हो जाती है जब हम कट करते हैं। इंसानों की तरह प्लांट नहीं होते कि आप उनको कट करें तो वो वही के वही अपना दम तोड़ दे, है ना। वो क्या करते हैं, जब तक आप उसकी जड़ें जब तक आप निकाल नहीं फेंकते हो, आप उखाड़ नहीं लेते हो, तब तक वो प्लांट अपने होप्स नहीं छोड़ता जिंदा रहने के लिए, उनके जो एम्बिशंस है वो नहीं छोड़ता, वो तब तक फाइट बैक करता है जब तक आप उसके रूट्स प्रॉपरली मतलब उसकी जड़ें आप निकालना फेंको और सूरज की किरणें उसके अगेंस्ट यूज करके उसको मारना आप जब तक ना आप शुरू करो तब तक वो प्लांट गिव अप नहीं करता अपनी जिंदगी से। सो दीज रूट्स आर मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ट्री एज दे बाइंड इट टू द अर्थ, मतलब कि जो रूट्स होते हैं जड़ें होती हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक प्लांट को, कि क्यों, क्योंकि वो अपने आप को मिट्टी से उसमें से कनेक्ट करता है और अपना खाना मतलब अपना जीवन का पूरा जो वो है वो बस मिट्टी से करता है और धूप से करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। सो वंस द रूट्स आर डिटैच द ट्री स्टार्ट्स ड्राइंग, इट विदर्स ड्राइस अप विद द एक्शन ऑफ द हीट एंड विंड, ट्विस्ट हार्डन्स एंड फाइनली इट डाइज। यहाँ पे बच्चों पोएट जो है हमारे उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह तरह से एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से ट्री जो है वो अपनी डेथ यानी कि अपनी मौत मर जाती है। हमारी नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ थोड़े से सवाल दिए गए हैं उनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और तो और मैंने आपके लिए और भी एडिशनल सवाल लाए हैं ताकि आपको आपकी एग्जाम लिखने में और ज्यादा सहायता हो। पर उससे पहले आपके टेक्स्ट के नीचे एक बहुत छोटी कविता दी गई है, वो बस पढ़ने के लिए आपको दी है, उसका आपके एकेडमिक से कोई रिलेशन नहीं है, उसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो वो एकदम से रीड करते हैं हम, ठीक है। सो कविता का नाम है ट्रीज। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज ट्री, अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट, अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे and lifts her leafy arms to pray, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair, upon whose bosom snow has lain, who intimately lives with the rain. Poems are made by fools like me, but only God can make a tree. ये बहुत ही सुंदर सी कविता है और वो हमें कह रही है कि एक पौधे की जिंदगी कैसी होती है ना, मतलब हम इंसानों की तरह भी उनकी जिंदगी होती है। और ये कविता को हम हमारी ओरिजिनल कविता जो है उससे हम रिलेट करेंगे, हमारी कविता का ओरिजिनल कविता का नाम है ऑन किलिंग अ ट्री, और उससे हम ये सीखेंगे बच्चों कि जब भी हमारे लाइफ में कोई थोड़ी बहुत थोड़ी मोटी डिफिकल्टीज आ जाती है, थोड़ी मतलब छोटी या फिर बड़ी, तब हम लोग गिव अप नहीं करेंगे, हम एक पौधे की तरह फाइट बैक करेंगे। जब भी हमारे लाइफ लाइफ में कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं और हमें तोड़ मरोड़ने की कोशिश करते हैं, और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे लाइफ का एक, हमारे जिंदगी का एक हिस्सा कट कर लेते हैं, तब हम क्या, हमें क्या करना चाहिए? उसी ट्री की तरह हमें सोचना चाहिए कि जब ट्री की एक ब्रांच कट हो जाती है तब वहां से नए जो प्लांट, नए जो पत्ते हैं वो उगाते हैं। उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी जब कोई डिफिकल्टी आती है तब हमें एक नई उड़ान भर लेनी चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।